समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं नेहा गोस्वामी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार नेहा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड यस, नेहा हैज ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू लुक फॉरवर्ड टू इन टुडेस शो। यस, इट्स अ स्मॉर्गसबोर्ड वी कैन से ऑफ वेरीड थिंग्स, एंड क्योंकि नाम है शो का परिक्रमा तो हस्बे दस्तूर देश की परिक्रमा पे निकलेंगे। वील गो टू डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड सी व्हाट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव फ्रॉम देयर, बिकॉज नेहा बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, very interesting, but they fail to become part of news bulletins because they are not as so-called hard stories as we call them, but definitely they are worth listening to. So we'll bring all of that in this show today, but let's start with the headlines. Both houses of parliament adjourn till tomorrow amid uproar and sloganeering.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा पर रवाना, मुक्त व्यापार समझौते और सुरक्षा पर मुख्य रूप से बातचीत होगी।
New Delhi calls for imposing serious cost on nations promoting cross-border terrorism.
एशियाई विकास बैंक ने कहा, भारत इस वित्तीय वर्ष में 6.5% से अधिक GDP वृद्धि के साथ सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा।
Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Jammu and Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan and Muzaffarabad today.
और क्रिकेट में मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच आज से शुरू।
And now it's time for a segment Dateline Inter, in which we talk about some of the important topics or important developments that are taking place. And today is 23rd July, Neha. So, zahir si baat hai that this date is marked in everyone's calendar, especially those related to the world of media and broadcasting, because today is National Broadcasting Day. Yes, we are celebrating the power of sound and the incredible journey of broadcasting in India. Today, we are commemorating National Broadcasting Day, a day that marks the birth of radio as we know it in our country. So let's take a captivating trip down the memory lane with this tune. Yes, a very very you can say nostalgic tune, because jaise ye dhun bajti hai na Neha, zahir si baat hai everyone goes back to those days when radio was the prime medium of entertainment, of infotainment, of everything. Wo zamane bade saadgi ke the, isn't it? Lekin aaj bhi radio, of course, it continues to play a very important part, because we all know that our lifestyle has become so hectic that nobody has the time to watch television or go to cinemas. So while they are driving, whether they are commuting in metros or are in their cars or anyway, it's the radio that has become their friend.
जी, आज ही के दिन 1927 में इतिहास रचा गया था। भारत में पहला रेडियो प्रसारण इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित हुआ था। इस प्रसारण ने संचार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी यात्रा की शुरुआत की, जिसने तब से अब तक दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को बदल दिया है।
From 1927, now fast forward to the year 1936, a milestone moment when the Indian State Broadcasting Service became the institution we now proudly know as All India Radio or AIR, and then it later gained its name Akashvani. With its inception, radio became a crucial tool in India's development and an indispensable part of people's lives.
वर्षों से रेडियो ने हमारे देश के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान रेडियो आशा की किरण और सूचना प्रसार का एक सशक्त माध्यम बना. रेडियो के माध्यम से ही एकता, स्वतंत्रता और एकजुटता का संदेश देश के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा और आज दूर दराज के गांवों में भी लोगों को रेडियो के माध्यम से ही जोड़ा गया.
That's right, Neha, and we all know that the journey continues, and even though it was introduced by the British, we carried forward because we knew the importance of this medium. And post 1947, that is post independence, AIR became an invaluable tool in promoting education, awareness and national integration. Well, listeners, do you know that in the year 1956, the name Akashvani was adopted for the national broadcaster? The word Akashvani translates to the voice from the sky, a fitting name considering how radio waves connect the country, spreading information far and wide. And over the years, Akashvani has cemented its place with its massive reach to diverse audiences. So let's listen to this report, Neha.
As the need for disseminating information and fostering unity during the freedom struggle grew, radio strengthened its place as a powerful tool that reached the masses. After the independence, the medium became instrumental in promoting literacy, health awareness and agricultural knowledge, especially in the rural areas. Speaking on the occasion, Prasar Bharati Chairman Navneet Kumar Sehgal said that Akashvani has been instrumental in fostering education, information and entertainment over the years.
Akashvani ki 90 varsh ki yatra kisi vatvriksh ki tarah rahi hai, jiski जड़ें इतिहास में हैं और शाखाएं हमारे सपनों की तात विस्तार पा रही हैं. 90 वर्ष में आकाशवाणी ने जो कुछ रचा वह एक प्रसारण नहीं है बल्कि एक संस्कृति की तरह है और ये भारत की सच्ची आत्मा की अभिव्यक्ति है क्योंकि आकाशवाणी लगभग 23 भाषाओं में 182 बोलियों में प्रसारित करता है. दुनिया में कोई भी प्रसारण का ऐसा तंत्र नहीं है जो कि इतनी विविधता के साथ अपना संदेश आम जन तक पहुंचाता है. यह वही मंच है जिसने गांधी जी से लेकर टैगोर तक को आम आदमी तक पहुंचाया.
प्रसार भारती सीईओ Gaurav Dwivedi said that Akashvani as a 90-year-old national heritage is still ongoing strong, adapting to the times and continuing to engage the audience.
Over the last 9 decades, Akashvani has been reaching out to loyal listeners, offering information, education and healthy entertainment. If you look at the programming mix of our stations across India, you will be amazed to realize that there is hardly any aspect of routine life that is left untouched. This 90-year-old national heritage is still going strong, adapting to the times and continuing to engage the audience.
Meanwhile, Akashvani Director General Dr. Pragya Paliwal Gaur said that as we approach these historic milestones, Akashvani stands renewed, relevant and ready for the future.
What began as a modest experiment in sound has over the decades evolved into a powerful public institution. Akashvani, the voice of the nation. Akashvani is now available on Waves OTT, a major leap towards anytime, anywhere listening.
Akashvani has spoken to the soul of the nation from north to south and east to west in its pursuit to inform, educate and entertain the masses and live up to its motto of Bahujan Hitaye, Bahujan Sukhaye. With Aman Yadav, Bhanu Pratap Singh, Akashvani News, Delhi.
और ठीक एक साल बाद 1957 यानी 1957 में एक और क्रांतिकारी बदलाव आया, विविध भारती सेवा का शुभारंभ. लोकप्रिय फिल्म संगीत पर केंद्रित विविध भारती लाखों भारतीय घरों में मनोरंजन की आवाज बन गई. बॉलीवुड के उन अविस्मरणीय गीतों को कौन भूल सकता है जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां और पुरानी यादें ताजा कर दी.
यस एब्सोल्युटली नेहा, आपकी भी आई एम श्योर कुछ यादें ताजा हुई होंगी जब विविध भारती का जिक्र हुआ, इजंट इट? एंड सो डू आवर लिसनर्स वुड बी रिमेम्बरिंग दोज डेज व्हेन द साउंड ऑफ विविध भारती फिल्ड देयर होम्स, ब्रिंगिंग द लेटेस्ट फिल्म हिट्स, द न्यूज एंड लाइट एंटरटेनमेंट स्ट्रेट इनटू द लिविंग रूम. वेल, वेदर इट वॉज द इवनिंग न्यूज, whether it was the cricket commentary or just a delightful chat with the host, Akashvani and Vivid Bharati truly became the soundtrack of our lives.
लेकिन सारा मनोरंजन से परे रेडियो बदलाव का एक सशक्त माध्यम रहा है. इसने लाखों लोगों को सूचित, शिक्षित और उनका मनोरंजन किया है और ऐसा बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के मिशन के साथ किया गया है जिसका अर्थ है सर्वजन के कल्याण और सुख के लिए.
दिगति गंत गूंजित अनंत शुभ मंगल वाणी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन कल्याणी,
दिग दिगंत गूंजित अनंत शुभ मंगलवाणी आकाशवाणी 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 आकाशवाणी
And yes, Neha, as you said, that the motto of Akashvani, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai, it befits because kai baar hota hai na, especially agar dekhen private FM channel mein ads zyada hote hain and sometimes you just feel that, you know, ki aapko kuch worth cheez nahi mil rahi sunne ko. But even whenever you tune into especially Akashvani, to koi na koi aisa show hota hai jisse aap kuch na kuch, you there are lot of takeaways. You take from them, you learn from them. And even for example, rural India mein kisan भाई जो हमारे हैं वो कुछ शोज हैं दैट आर पर्टिकुलरली टारगेटिंग द फार्मर्स दे टेल देम दे हैव देयर एक्सपर्ट्स कमिंग ऑन द शोज दे टेल देम अबाउट द लेटेस्ट वैरायटी ऑफ सीड्स द लेटेस्ट फर्टिलाइजर्स सो आकाशवाणी हैज समथिंग फॉर एवरीवन चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या फिर कोई नॉन एजुकेटेड बूढ़ा हो
बच्चों के लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं
यस सो फ्रॉम प्रमोटिंग लिटरेसी कैंपेन्स हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एग्रीकल्चरल नॉलेज स्पेशली इन रूरल इंडिया To being a source of empowerment and hope in times of crisis, radio has been a trusted companion for all. And today, in the age of smartphones and the internet, radio continues to evolve and adapt. Yet, its core essence remains the same. That is, a tool that brings people together, it informs, entertains, and preserves our rich culture.
जी बिल्कुल तो इस राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर आइए रेडियो की शक्ति को बेहतर ढंग से जानें उन आवाजों के लिए जिन्होंने हमारे देश के इतिहास को आकार दिया है उन प्रस्तोताओं के लिए जिन्होंने खुशी और ज्ञान का संचार किया है और उन लाखों श्रोताओं के लिए जिन्हें रेडियो के जादू ने छुआ है
Absolutely, and as we celebrate this incredible journey today, let's remember that radio isn't just a medium of the past, it's a living, breathing entity that continues to shape our future. We invite you to stay tuned and keep listening as we continue our journey together in this world of sound and stories. May the voice of the airwaves continue to inspire, educate, and entertain us all for generations to come. And now we should talk about our second topic for Dateline India. And uska second topic ke baare mein aap kuch batayenge, Neha? Yes, it's about the Bharatiya Mazdoor Divas.
मजदूर संघ के बारे में है ये कारखाने के फर्श से लेकर डिजिटल सीमाओं तक भारतीय मजदूर संघ आगे बढ़ना जारी रखता है तो श्रमिकों के पसीने एकता की ताकत और एक मजबूत निष्पक्ष भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित है
Yes, of course, and why we chose this as another topic for Dateline India because we all know that it's dedicated to a towering pillar of India's labor movement, that is the Bharatiya Mazdoor Sangh or BMS as we know it, as it celebrates 70 years of relentless service to the working people of this nation. It was founded in the year 1955. The Bharatiya Mazdoor Sangh has grown to become one of the largest central trade unions. And as we salute 70 years of this iconic organization, we also celebrate the spirit of the Indian worker, determined, dignified, and deeply committed to building the nation.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है देश में सबसे लंबी तटरेखा वाला गुजरात मछली उत्पादन में देश में सबसे आगे है 350 किलोमीटर से ज्यादा लंबी तटरेखा वाले कच्छ में इस साल रिकॉर्ड 50,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है
गुजरात के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के रूप में उभरे कच्छ जिले के जखौ में इस साल मछली उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है और वार्षिक कारोबार पिछले साल की तुलना में ढाई गुना बढ़कर 4,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है कच्छ स्थित जखौ बंदरगाह गुजरात का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला बंदरगाह है सौराष्ट्र से भी मछुआरे यहां मछली पकड़ने आते हैं पिछले साल जखौ बंदरगाह से 28,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था जो इस साल बढ़कर 40,000 मीट्रिक टन हो गया है यानी कच्छ के कुल मछली उत्पादन में जखौ का योगदान 70 से 80% है भारत सरकार ने कच्छ के जखौ बंदरगाह पर 121 करोड़ रुपए की लागत से मत्स्य पालन बंदरगाह केंद्र की स्थापना की घोषणा की है इस केंद्र की स्थापना के बाद जखौ बंदरगाह का वार्षिक कारोबार दो गुना होने का अनुमान है वर्तमान में प्रसंस्करण के लिए मछलियों को वेरावल ले जाना पड़ता है इस केंद्र की स्थापना से जखौ बंदरगाह पर ही प्रसंस्करण और अन्य गतिविधि गतिविधियां की जा सकेगी। परिक्रमा के लिए भुज से मैं परेश मारू।
And from the western coast, we now head towards the northeast. Well, for the Mizos in Mizoram, cleanliness is a part of their culture and tradition. During the olden days, the Mizo youth came out in large numbers almost every week and every month to clean their villages and surroundings known as Nalangpoi. I hope I have pronounced it correctly, and if not, then I hope that Mizo people would probably give me, you know, they would excuse me. But nonetheless, it's a beautiful tradition, and continuing with that tradition and government intervention in recent times, cleanliness drives have taken a new momentum in the state of Mizoram. So let's hear more from our correspondent.
In Mizoram, Lunglei town in southern Mizoram shined bright in the recent Swachh Survekshan Award, which was held at New Delhi, bagging the honor with the promising Swachh Shahar of Mizoram Award. The award-handing ceremony organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs was held in New Delhi on July 17, 2025. The Cleanliness Award was received by State Urban Development and Poverty Elevation UDNPA Minister K. Sabdanga, along with Lunglei Municipal Council LMC Vice Chairman K. Larinoma and other officials. Speaking to Akashvani News, Lunglei Municipal Council LMC Vice Chairman Kela Rinoma said that the award is a recognition of the concerted efforts jointly taken up by the Municipal Council and NGOs such as YMA, MHEP, MZP and others. He says,
"We are truly grateful that Lunglei has been recognized as the promising Swachh Shahar of Mizoram in the Swachh Survekshan 2024-2025 Tandem Hua. This recognition is a moment of pride and unity for the people of Lunglei. We dedicate a fourth of the Lunglei Municipal Council. We have come a long way, and we also deeply thankful to the government of Mizoram for their constant support."
The Swachh Survekshan Awards are part of the Swachh Bharat Mission Urban, SBMU, initiatives and evaluate towns and cities across India based on various cleanliness indicators. With Gin Gangte, this is Isaac from Akashvani News, Aizawl.
घर साफ है और बाहर भी है, स्वच्छता के रास्ते पे आगे ही बढ़े,
आगे ही बढ़े।
गांव गली मोहल्ले शहर सभी में स्वच्छता का त्योहार करें।
सीमा पर तैनात सैनिक बिना अपनी जान की परवाह किए देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं। हम देशवासियों का भी दायित्व बनता है कि अपने सैनिकों के बारे में सोचें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टरों के एक संगठन ने अपना ऑक्सीजन प्लांट कश्मीर में तैनात सैनिकों के लिए सेना को हस्तांतरित किया है।
कोविड के दौरान कई अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत संगठनों ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए थे। लातूर की नर्सिंग प्रतिष्ठान भी ऐसे ही संगठनों में से एक है। नर्सिंग प्रतिष्ठान के इस प्लांट से लातूर और आसपास के कई मरीजों को कोविड के दौरान ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन कोविड के उपरांत इस प्लांट की यहाँ पर विशेष आवश्यकता नहीं है, यह जानकर संगठन ने अपना प्लांट सेना को देने का निर्णय लिया। कश्मीर में कार्यान्वित होने जा रहा यह ऑक्सीजन प्लांट सैनिकों को उनकी आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की आपूर्ति तो करेगा ही, साथ ही सैनिकों को आश्वस्त भी करेगा कि भले ही देश की जनता अपने में और अपनों में व्यस्त दिखे, लेकिन सीमा की सुरक्षा में तैनात सैनिकों की ओर भी जनता का पूरा ध्यान है। परिक्रमा के लिए शशिकांत पाटिल के साथ छत्रपति संभाजीनगर से मैं हर्षवर्धन दीक्षित।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
Yes, in cricket, India were 47 for no loss against England in the first innings on day one of the fourth test at Manchester when reports last came in. Earlier, England won the toss and opted to bowl. Currently, India is trailing 1-2 in the five-match test series. And moving on to some business news, well, benchmark equity indices ended higher today, tracking positive global cues. The BSE Sensex soared 540 points to close at 82,727, and NSE Nifty 50 also jumped 159 points to finish at 25,220.
Mm-hmm. अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
23rd July is the birth anniversary of Keshav Gangadhar Tilak, popularly known as Lokmanya Bal Gangadhar Tilak. The Britishers called him the father of the Indian unrest. Mahatma Gandhi called him the maker of modern India.
Born in 1856 in Ratnagiri district of Maharashtra,
Tilak left the blueprint of the Home Rule movement, Swaraj and Swadeshi, which made him the first national leader who envisioned the formation of linguistic states. He was part of the popular triumvirate of Lal, Bal and Pal. The trio included Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal and Bal Gangadhar Tilak. Today we also pay tribute to Chandrasekhar Azad, who was born in Bhavra village in present-day Alirajpur district of Madhya Pradesh. Chandrasekhar joined the freedom struggle in 1921 when he was just a school student. In December 1921, Mahatma Gandhi launched the non-cooperation movement.
Chandrasekhar took part in the movement and he was arrested by the British. He adopted the last name Azad, which means free in Urdu. Legend has it that while he adopted the name, he vowed the police would never capture him alive.
Azad joined the Hindustan Republican Association, HRA, a revolutionary organization formed by Ram Prasad Bismil. He was most famous for the Kakori rail dacoity in 1925 and the assassination of Assistant Superintendent of Police John Saunders in 1928.
On February the 23rd, 1931, police surrounded Azad and he was hit on his right thigh, making it difficult for him to escape. With one bullet in his pistol and surrounded by the police, he found himself outnumbered. He shot himself, keeping his pledge of never being captured alive.
We remember Martyr Karam Singh. Born in 1888 in Hoshiarpur, Punjab, he participated in the movement of Akalis in Punjab.
Karam Singh was arrested in 1923, 1927 and again in 1941 for his revolutionary activities and was sentenced to 7 years of rigorous imprisonment. But Karam Singh escaped from Kapurthala jail. He was chased by the police and was killed in an encounter on the 23rd of July, 1943.
आज पुण्यतिथि है कैप्टन लक्ष्मी सहगल की. कैप्टन लक्ष्मी सहगल शेर दिल महिलाओं में से एक थी, भारत की पहली महिला रेजिमेंट की लीडर, एक डॉक्टर और एक सामाजिक कार्यकर्ता. कैप्टन लक्ष्मी सहगल सभी पीढ़ियों की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है. उनका जन्म 24 अक्टूबर 1914 को भारत के मद्रास प्रांत में हुआ था. वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली आजाद हिंद की प्रोविजनल गवर्नमेंट की कैबिनेट की एकमात्र महिला सदस्य थी.
And now we are remembering a very renowned comedian and actor of yesteryears. लेकिन उनके बारे में बात करने से पहले ये गाना सुनते हैं.
चतुर नार करके सिंगार, ये चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे हे हे हे. चतुर नार करके सिंगार, परसा गगगदित सा तरस तप, पल कर कर तप पल कर. चतुर नार कर के
सिंगार. धम 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 रोक.
बॉलीवुड फिल्मों में कई बार ऐसा होता है कि कभी हीरो पर विलेन भारी पड़ जाता है तो कभी साइड रोल में नजर आने वाला कलाकार. बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर ही ऐसे नजारे देखने को मिलते हैं. गुजरे दौर के मशहूर अभिनेता रहे महमूद अली का जलवा भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था. एक से बढ़कर एक फिल्मों में नजर आए महमूद अली की दमदार अदाकारी से हीरो भी खौफ खाते थे. उन्होंने अपने करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था.
What a marvelous repertoire indeed. And जाहिर सी बात है, अगर जब जिसने 300 फिल्में की हैं और उसको जो है खाली 2 मिनट में निपटाना कह सकते हैं, बड़ा अनफेयर हो जाता है. Nonetheless, let's listen to this dialogue.
हमारे घर के पीछे लाल मट्टी का खड्डा, उसमें बैठा बुड्ढा और मारे मेरा पाँव.
ओ नहीं, तेरा हाथ है सुंदर. हाँ. का प्रॉब्लम खड़ी हो गई है.
क्या?
वो आशा का ग्रैंडपा है, कहता है कि मैं यानी कि मदन मल्होत्रा अपने माँ बाप को पेश करें.
यार
हम दोनों ने तो अपने माँ बाप की शक्ल देखी ही नहीं, वो बेचारे तो भगवान को प्यारे हो गए।
विश्व प्रसिद्ध रंगमंच व्यक्तित्व रतन थियम का आज निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। उनके जीवन के साथ ही भारत के सांस्कृतिक और रंगमंचीय इतिहास में एक युग का अंत हो गया है। आकाशवाणी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
मणिपुर के इम्फाल पश्चिम जिले में जन्मे रतन थियम ने इम्फाल के रिम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। रतन थियम को चक्रव्यूह, उत्तर प्रियदर्शी, हे नुंग शिबी पृथ्वी, चिंगलोन, मपन, तंपक अमा जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय नाटकों के निर्देशन के लिए जाना जाता है। चक्रव्यूह के लिए उन्हें 1987 के एडिनबर्ग अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में फ्रिंज फर्स्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रतन थियम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष और अकादमी के फेलोशिप के अलावा इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। रंगमंच के क्षेत्र में उनके योगदान के सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें 1989 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया। 1987 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मणिपुर सरकार ने भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। वे कोरस रेपर्टरी इम्फाल के संस्थापक थे।
Today we are also remembering Shiv Kumar Batavi on his birth anniversary, a renowned poet, writer and playwright, especially of the Punjabi language. He was most known for his romantic poetry, noted for its heightened passion, pathos, separation and lover's agony. He is also called the Keats of Punjab. He became the youngest recipient of the Sahit Akademi Award in 1967. Aap andaza laga sakti hain Neha ki unki kya umr rahi hogi jab unko ye award mila? Any guess? Only 25. Can you imagine? He was so young. Yes, absolutely. And that award was given for his epic verse play based on the ancient legend of Puran Bhagat, Luna, 1965, which is now considered a masterpiece in modern Punjabi literature, and which also created a new genre of modern Punjabi qissa. Today, his poetry stands in equal footing amongst those by stalwarts of modern Punjabi poetry like Mohan Singh and Amrita Pritham, all of whom are popular on both sides of the border. And unhone jo hai bahut hi khoobsurat sa ek interview diya tha BBC ko. I'm sure his fans would have seen that interview, but we bring that an excerpt, you can say, of that interview for our listeners.
Kavita jo hai na wo ek hadse se paida nahi hoti hai. कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कविता मोहब्बत से पैदा होती है, कुछ लोगों का ख्याल है कि कविता फ्रस्ट्रेशन जब हो, जिंदगी में उदासी हो, तब पैदा होती है। मेरा ख्याल है कि मेरे में जो कविता पैदा हुई वो उसमें सब कुछ था। सबसे पहली जो जिंदगी में, वहाँ हिंदुस्तानी जिंदगी में बात है वो ये है कि वहाँ क्लासेस हैं, श्रेणियाँ हैं, कोई लोअर मिडिल क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है, उनका दुखांत है। हर आदमी, हर बाप, हर माँ एक जुए की तरह ना उसको पढ़ाती है या पढ़ाते हैं, और 10 साल के बाद वो सोचते हैं कि इसकी मुझे रिटर्न मिलेगी, वापसी मिलेगी।
We're also remembering Dr. Subramaniam Lakshmi Narayan today, a violinist, composer and conductor who is trained in classical Carnatic music tradition and Western classical music as well. He was born in Madras Presidency and he lived in Jaffna during his younger years. He developed a passion for music as well as science from a very young age, studying medicine and acquiring his MBBS at the Madras Medical College. He registered there as a general practitioner before deciding to pursue music full time. He has a master's degree in Western classical music as well, which he acquired at the California Institute of the Arts. And agar unke kaha jaye na, keh sakte hain ki genes mein hote hain hum log ke jo talent hota hai, to we can probably say it holds true for Dr. Lakshmi Narayan, because his uncles include Ramnath Raghavan and Ramnath Krishnan, and also his brothers are acclaimed musicians, include violinist composers L. Shankar and the late L. Vaidyanathan, and he has released recordings with both of them. And अब तो घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है नेहा कि अब वक्त बहुत कम है
जी, और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए नेहा गोस्वामी और सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
नमस्कार।